जी, मैं अर्ज कर रहा था कि हजूर कलंदर बाब औलिया ने किताब लोहो कलम में ये बात फरमाई है कि सहाबा कराम को हजूर अलैहिस्सलाम की जात में बहुत ज्यादा शगफ था। उस शगफ की वजह से उनको अल्फाज की मानवियत, अदबियत और मफहूम की, अल्फाज के मफहूम की पूरी गहराइयों से वो आशना हो जाते थे और वो नूरी तमस्सुलात से बगैर किसी कोशिश और काविश के आशना हो जाते थे। तो इस फरमान में चार बातें हैं। पहली बात यह है कि अल्फाज की मानवियत क्या है। मसलन जो लफ्ज हम पढ़ रहे हैं उसका एक तर्जमा मुतरजम ने नीचे लिखा है, फिर उस कसर को पूरा करने के लिए वहां पे ब्रैकेटें डाल दी हैं। तो जब भी आप तर्जमा पढ़ें तो ये एक तो ब्रैकेटों पे ज्यादा तवज्जो ना दें, क्योंकि ब्रैकेट में उसने अपने जहन के मुताबिक जो मफाहिम है वो डाले हैं। इसमें जो राज की बात है कि जब हजूर अलैहिस्सलाम की जात में शगफ, यानी एक दोस्त, एक पर्सनल ताल्लुक की वजह से जब आप किसी का जुमला सुनते हैं तो आपको उसके वो मीनिंग समझ में आते हैं जो कहने वाले के जहन में होते हैं। तो जब भी हम कलाम पाक को एक्सेस करें, उसको अप्रोच करें, तो हमें अल्फाज की वो मानवियत समझनी है जो कहने वाले के जहन में, यानी अल्लाह के जहन में। उस तक जाने के लिए हमारे अंदर कितना शौक और कितना शगफ होना चाहिए। दूसरी बात है अदबियत की। ये अदबियत का लफ्ज क्या मतलब है? अब ये देखिए कि हम अब एक लफ्ज शेर, शेर का एक ही मतलब है क्या? कि शेर का मतलब एक जान, एक दरिंदा। लेकिन जब हम किसी इंसान के लिए कहते हैं कि वो शेर है तो हम बहादुरी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ? ये अदबियत हुई, ये अदबियत हुई कि हमने शेर के लफ्ज को दबा के, उसे नरम करके किसी और मफहूम में इस्तेमाल किया। हालांकि शेर का लफ्ज तो अब वो शेर है कहना तो गौर करें। तो ये दो बातें वाज़ह हो गई। एक तो ये कि मानवियत क्या है, पहले तो शगफ जरूरी है, दूसरा फिर मानवियत क्या है, तीसरा अदबियत। यानी कि बाज जगह हम देखते हैं कि अल्फाज को जाहरी मानों के साथ साथ उनके कुछ बातनी मफाहिम भी हैं। फिर तीसरा है मफहूम की पूरी गहराइयां, यानी कोई बात क्यों बयान की जा रही है। वो जाहिर है कि अल्फाज के पीछे एक गैर मरई निज़ाम है जो कि मफहूम को इंडिकेट कर रहा है, फिर उसकी गहराइयां। फिर चौथा दर्जा है कि नूरी तमस्सुलात, यानी जब हम कोई लफ्ज सुने तो हमारे जहन में कुछ तस्वीर बने, कुछ तमस्सुल बने। अगर हम सिर्फ तिलावत करेंगे, सिर्फ किरत करेंगे और सिर्फ उसकी तजवीद करते रहेंगे, या महज उसकी क्या कहते हैं रीडिंग करते रहेंगे, उसका पैरूजल करते रहेंगे, तो क्या हमारी रसाई मफाहिम तक होगी? तो दी आंसर इज नो। लिहाजा आप जब कुरान को अप्रोच करें तो इस विजन के साथ अप्रोच करें और इन चार बातों को जहन में रख के अप्रोच करना है कि मुझे इस लफ्ज का माना भी समझना है, इसकी इसे अदबी तौर पे कैसे इस्तेमाल किया गया ये एंगल भी जहन में होना चाहिए, साथ में इसका असल मफहूम क्या है। और फिर वो मफहूम इतना गहरा हमारे अंदर उतर जाए कि हमें उसके उसके नूरी तमस्सुलात नजर आने लगे। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि आप जब भी कुरान को पढ़ें तो इस जज्बे से पढ़ें जिस तरह से हजूर कलंदर बाब औलिया ने इरशाद फरमाया। तो शुरू करते हैं जी, आज की सूरत है सूरह नाज़ियात। सूरह नाज़ियात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का क्या मतलब है? हमारे यहाँ तर्जमा किया जाता है कि मैं शैतान मर्दूद से अल्लाह की पनाह चाहता हूँ, यानी अल्लाह से पनाह चाहता हूँ शैतान मर्दूद से, कि वो मुझे शैतान मर्दूद रजीम इससे नहीं। ये तर्जमा सतही है। औज़ु बिल्लाह का मतलब है कि मैं अपने अंदर का फिल्ट्रेशन सिस्टम ऑन कर रहा हूँ, और वो भी अल्लाह के साथ होकर। औज़ु बिल्लाह, बिल्लाह अल्लाह के साथ होकर। शैतान रजीम, वो रजम कर देने वाली नेगेटिविटी जिसको पत्थरों से मार मार के हटा देना चाहिए, उससे बचने का निज़ाम अपने अंदर ऑन कर रहा हूँ। फिल्ट्रेशन सिस्टम को मैंने स्विच ऑन कर लिया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बे इस्मे अल्लाह, अल्लाह के नाम पे, यानी अल्लाह के लिए करता हूँ। अब मैं जो भी करूँगा वो अल्लाह के लिए करूँगा, यानी अल्लाह के नाम पे करूँगा। आपने देखा होगा कि जब हम हज बदल कई लोग करते हैं तो कहते हैं मैं अपनी नानी के नाम पे हज कर रहा हूँ, यानी ऑन बिहाफ ऑफ नानी अम्मा कर रहा हूँ। आप कहते हैं मैं यह कुर्बानी अब्बा के लिए कर रही हूँ, यानी ऑन बिहाफ ऑफ अब्बा हम ये कुर्बानी करते हैं, तो कहते हैं कि उनके नाम पे कर रहा हूँ। तो बे इसमें अल्लाह अरबी का कायदा ये है कि जब कोई काम किसी के नाम पे किया जाता है तो वो असल में उसके बिहाफ पे किया जा रहा है। अब इसमें एक और नुक्ते की बात ये भी सुन रखें कि बिस्मिल्लाह जो है ये कुरान की पहली ऑफिशियल आयत है। आप देखें आपके कुरान में इसमें कोई नंबर ही नहीं लगा होगा। अक्सर कुरान की तबात में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के आगे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, और ऊपर लिखा है कि इसमें 7 आयतें, तो नीचे 6 आयतों को गड़बड़ करके तो उसको 7 बनाया गया। खैर एनीवे, तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। अल्लाह कौन? जो रहमान है। अब लफ्ज रहमान की जड़ को देखें, इसका रूट वर्ड देखें तो ये रहम है। मज़े की बात है, रहीम का रूट वर्ड भी रहम है। अब अरबी में रहम किसे कहते हैं? अरबी में होता है, उर्दू में किया जाता है, यानी मुझ पे रहम करें, ये उर्दू के माने हैं। अरबी में रहम जो है वो रहम मादर को कहते हैं, यानी इसका मतलब है कि रहमान जो है ये तख्लीकी निज़ाम को बनाने वाला हुआ और रहीम तख्लीकी निज़ाम को चलाने वाला हुआ। यानी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम वो जो रहम को बनाने वाला है, और रहीम जो रहम में बनाने वाला है, यानी जो तख्लीकी निज़ाम को चलाने और बनाने वाला है, मैं उसके बिहाफ पे कर रहा हूँ। गौर करें, बिस्मिल्लाह का तर्जमा वाज़े होने से आपका स्टेटस क्या बन गया? इन्नी जाहिलु फिल अर्दे खलीफा, क्योंकि आप जो कुछ भी कर रहे हैं अल्लाह के बिहाफ पे कर रहे हैं। अब जब आप अल्लाह के बिहाफ पे करते हुए किसी काम को समझने की कोशिश करेंगे तो जाहिर है कि आपको सपोर्ट किसकी हुई? अल्लाह की। तो अब पहली आयत है वन नाज़ियात गर्का। नाज़ियात का लफ्ज नज़ा से है। नज़ा कहते हैं किसी चीज को खींच कर निकालना। इसी तरह आलम नज़ा, यानी जब रूह खींच कर निकल रही होती है, आदमी मर रहा होता है, तो कहते हैं ये आलम नज़ा में। तो नाज़ियात खींच कर निकालने वाला या निकालने निकालना। गर्का यानी डाइव इन करना। वह नाशताते नश्ता, नाशताते नश्ता खोलना, किसी बंद चीज को खोलना। वह साबे हाथ सभा, स्लाइड करना। सभा काम को भी कहते हैं, ड्यूटी को भी कहते हैं। वह साबे हाथ सभा यानी कोई, इसे इन्होंने तर्जमा किया कि वो तैरते हैं। फ साबे काते सबका, और सबकत ले जाने ले जाते हैं, यानी आगे और आगे बढ़ना। फस साबिकात सबका, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फल मुदब्बिरात अमरा फा पस, लिहाजा ताके मुदब्बिर तदबीर करें अमरा काम की। यौमा तरजफ व राजे फाते, और ये हालत ऐसी होती है कि जिसमें थर थराहट होती है, कप कपाहट होती है, तरजफो कांपती है, राजे फाते कांपने वाली, तत्बाउर रादे फाते इतबा करती है, यानी कि आफ्टर शॉक्स फॉलोड बाई आफ्टर शॉक्स। तत्बाउ रादे फाते, रादे फा का मतलब है आफ्टर शॉक्स, तत्बाउ फॉलोड बाई। कुलूबुन योमा जिन वाजे फातो, दिल जो हैं वो तेजी से धड़क रहे होते हैं इस हालत में। योमा जिन, योम का मतलब दिन नहीं है, योम का मतलब हालत, योम का मतलब बनावट। कुलूबुन योमा जिन, दिलों की हालत ऐसी है कि वाजे फाते वो तेजी से धड़क रहे होते हैं। अब सारोहा हाशियातुन, और आंखें जो हैं वो खशियत से झुक जाती हैं या एहसास से भर जाती हैं। लफ्ज़ खाशिया का मतलब खशियत है, एहसास है। अब ये नौ आयात के मैंने आपको लफ्जी मफाहीम शेयर किए, इन में कोई मतलब बताकर या एक कोई मंजर बताकर अल्लाह रब्बे करीम फरमा रहे हैं यकुलूना, ये कहते हैं। अब अल्लाह रब्बे करीम पहले एक नौ आयात में एक बात फरमा कर कहते हैं, ये कहते हैं, ये कुलूना आ इन लमर्दूदूना फिल हाफिराते, इन्ना क्या हम लमर्दूदूना वापस मर्दूद, यानी के लौटाए जाएंगे या पलटाए जाएंगे या हटाए जाएंगे, फिल हाफिराते यानी इस हालत में। इज़ा कुन्ना इज़ाम नाखिरात, जबकि हमारी हड्डियां भी गल चुकी होंगी, यानी जब हमारी हड्डियां गल चुकी होंगी तो विल बी ब्रॉट बैक इनटू दिस स्टेट। ला मर्दूदूना फिल हाफिरात, इस मौजूदा हालत में हमें वापस लाया जाएगा। कालू कहते हैं तिल का, ये हालत तो इज़ा कुर्रतिन खासिरातिन, ये तो हमारे लिए बड़े नुकसान की घाटे की बात होगी। अब यहाँ पे मैं ये कहूँ कि ये बहुत ही गहरी टॉन्ट की है अल्लाह ने किस पे, जो ये कहते हैं कि हम मरने के बाद दोबारा उठाए जाएंगे। तो अल्लाह तबारक व ताला बता रहे हैं कि जब तुम्हें बार बार एक हालत को रिपीट किया जाता है, भूख लगती है दोबारा भूख लगती है, तो उस वक्त तो आप नहीं बुरा मनाते, यानी जब कोई तकाजा पूरा हो जाता है, जब आप दोबारा उस तकाजे को पूरा करते हैं, जब उस तकाजे की तकरार होती है, तो आप उस वक्त तो बुरा नहीं मनाते। और यहाँ पे आप कह रहे हैं कि हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा जब दोबारा भूख लगती है, आप दोबारा खाना खाते हैं तो वो पहला खाना तो फुजला बन चुका होता है। कालू कहते हैं तिल का इजा कुर्रतिन खासिरा कर्रतिन खासिरा, तो हमारा तो बड़ा नुकसान होगा। अब इस पे अल्लाह मियां फिर आगे से फरमाते हैं फाइनमा हैया जज्जरतन वाहिदातन, तुम्हारी तो हालत यह है कि एक चीख की मारो, एक आवाज की मारो, फायजा हम बे साहिर आते कि तुम उस एक आवाज से खुले में जा पड़ते हो। मतलब आप कमरे में बैठे हैं, बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, अचानक बाहर एक तेज चीख की आवाज आए तो आप उठ के बाहर को दौड़ते हैं। ये कैफियत बताकर कहा कि तुम्हारी औकात क्या है। हल अता का हदीस मूसा, तुम्हें मूसा की बात नहीं पहुंची क्या, तुमने मूसा की हदीस, हदस हदस वाक्या हदीस, हमने सिर्फ हजूर सलाम के अकवाल मुबारका का नाम अहादीस मुबारका रखा है, नहीं यहाँ पे देखें हदीस, हदीस मूसा की बात नहीं, जो वाकया उसके साथ हुआ क्या वो नहीं तुम तक पहुंचा। इजा नादहु रब्बहु बिल वादिल मुकद्दस तवा, जिसने आवाज दी रब्बहु सॉरी जिसको आवाज दी उसके रब ने बिल वादिल मुकद्दस तवा, तवा की मुकद्दस वादी से। मुकद्दस का मतलब है जिसमें कोई चीज मिलावट ना हो, जहां कोई अमेजिश ना हो, वहां एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड कह लें जिसमें से उसको आवाज दी गई। और क्या कहा, इज़हब इला फिरौना इन्नहु तगा, कि तुम जरा हटो। इज़हब, इज़हब का मतलब हटना। अब इसी से लफ्ज मजहब है। इज़हब इला फिरौना, फिरौन की तरफ हटो। इन्नहु तगा, क्योंकि वो जरा रास्ते से हट गया है। इन्नहु तगा, वो रास्ते से हट गया है, या वो तगा में मुब्तला हो गया, सरकशी पे उतर आया है। फकुल, फिर कहो उसे, यानी कि मूसा को जाके कहो कि हल्लका इला अन तज़क्का, कि क्या मैं तुझे तेरी नशो नुमा की तरफ मतवज्जो न करूं, तुझे तेरा तेरी मदद ना करूं। हल्लका इला, क्या मैं तुझे तेरा तज़किया करने की तरफ ना ले चलूं। हल लका इला अन तज़क्का, कि क्या मैं तुझे तेरा तज़किया न करवा दूं। वाहदिया का, और क्या मैं तुझको हदायत दूं। इला रब्बे का, तेरे रब की तरफ। फतगशा, फा फे का मतलब ताके, फे का मतलब लिहाजा, ताके तू फतगशा, यानी तू उसकी खशियत हासिल कर ले, यानी तेरे अंदर उसका एहसास बेदार हो जाए। फाराहू पस, फा आराहू पस, हुल आयातुल कुबरा, फिर उसने दिखाई। फाराहू, उसको दिखाई, कुबरा बड़ी आयत निशानी, फिर उसको एक बड़ी निशानी दिखाई, लेकिन उसने क्या किया। फकज़बा वासा, उसने तकजीब की, झुटलाया, बदतमीजी की, वासा मुंह फेरा। सुम्मा अदबर यासा, और कोशिश करके पीठ फेर ली। अदबर दुबर से। फहशरा फनादा, और आवाजें लगाई और जमा किया। फहशरा जमा किया, फनादा आवाजें लगाकर। फकाला, और कहा, अना रब्बुकुम अलआला, मैं हूं तुम्हारा सबसे बड़ा रब। फैजा फअखज़ा, फअखज़हु अल्लाह नकाल अलआखिरति वउला। फअखज़ा, अखज कर लिया अल्लाह, अल्लाह ने उसे पकड़ लिया, यानी कि उसको मतलब कि ड्रॉ आउट कर दिया। नकाल अल आखरत वल उला, यानी पूरे सिस्टम में से जिसका कोई शुरू भी है और आखरत भी है, इस सारे सिस्टम से उसको आउट कर दिया गया। किसको? फिरौन को। क्यों? क्योंकि वो खुद को रब मानने बैठ गया था। इन फी ज़ालिका लिबरतुन लिमन यख्शा, इसमें यानी उसमें, ज़ालिका उसमें, फी ज़ालिका उसमें इबरत है, लिमन यख्शा, जो एहसास करते हैं। अंतुम अशद्दु खल्का और समा बनाहा, अब यहाँ पे वो बात जो पीछे चल रही थी उसको तोड़ के मूसा की बात करके फिर कहा कि क्या तुम्हें बनाना, अंतुम अशद्दु खल्का, क्या तुमको बनाना दुश्वार है। हमें समा बनाहा, या तुम्हारे ऊपर ये शऊर के ये जो दर्जे बनाना है इसका बनाना मुश्किल था। तो अगर मैं तुम्हारे मादी जिस्म के ऊपर 7 दर्जे जो शऊर के बनाए हैं वो बना सकता हूँ, तो तुमको वापस उस हालत में पलटाना क्या दुश्वार है। आन तुम अशद खलका, तुम्हें तख्लीक करना दुश्वार है। हमें समा बनाहा, या तुम्हारे ऊपर आसमान का बनाया जाना। वो आसमान रफा سم کہا فسوہا جس کو اللہ نے رفت دی اونچا کیا، سم کہا بلند کیا، فسوہا ایک خاص پرپورشن میں، واغتشا لیلہا واخرجت دہاہا، اور پھر اغتشا لیلہا رات کو تاری کیا، واخرجا دہاہا اور اس میں سے روشنی نکالی۔ اب آپ غور کریں، بات ہو رہی ہے شعور کی، اب یہ اغتشا لیلہا یعنی کہ رات کے حواس تاری کیے، واخرجا دہاہا اور اس میں سے دن کے حواس کو برآمد کیا، والارض اور زمین کو یعنی سکرین کو، بعد ذالک دہاہا اور زمین کو کیا کیا، پھیلا دیا، یعنی سکرین واز میڈ اویلیبل فار اٹس ڈسپلے، بعد ذالک اور اس کے بعد، اس کے بعد ذالک اس کے بعد زمین کو مہیا کر دیا گیا تاکہ وہ ڈسپلے جو اس کے اوپر ڈسپلے ہونا ہے وہ ہو سکے۔ پھر اخرجا منہا اس میں سے نکالتے ہیں آپ ماہا پانی کو، اب لفظ پانی دیکھیں، و مر آہا، اب انہوں نے اس کا ترجمہ کر دیا چارہ، غلط۔ دیکھیں جب بات ہو رہی ہے حواس کی، تصورات کی، تو اس میں سے منہا ماہا، حضور قلندر بابا اولیاء نے فرمایا کہ ماہ کا مطلب تصورات کا خول، یعنی کہ پھر اس میں سے تصورات نکلتے ہیں اور وہ آپ کو مراہا، مراد کا لفظ سنا ہوگا آپ نے اردو میں، کسی کو نوکری پہ رکھتے ہیں تو جی کیا کیا مراد دی گئی، تو یہاں پہ دیکھیں چارہ کیسے ہو سکتا ہے، مراہا یعنی اس کے ساتھ اس کو کچھ فردر بینیفٹس ملتے ہیں، والجبال ارسہا اور پھر اس کے اندر ہم ایک طبیعت کو، جبلت کو نافذ کر دیتے ہیں، مطالکم والانامکم، اور یہ تمہارے اور لیے ایک انعام ہے اور ایک متا ہے، تمہارے لیے انعام ہے اور متا ہے، متا کا مطلب استعمال کی چیز، متاع لکم تمہارے استعمال کے لیے ہے، والانامکم اور یہ اللہ کا ایک انعام ہے، ہم نے کر دیا یہاں پہ ترجمہ کہ یہ تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے چارہ ہے۔ یہ ظاہری دنیا کی سطحی نظر سے دیکھیں تو حالت یہی ہے، لیکن اس کے بیک ڈراپ میں، اس کے باطنی مفاہیم میں مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہارا شعور بنایا، اس کو اونچا کیا، اس کو سیٹ کیا، پھر تمہارے تمہیں حواس عطا کیے، لیلہا واخرجا دہا، پھر اس حواسوں میں ہم نے آپ کو یعنی کہ دن کے حواس بھی عطا کیے، اور پھر زمین جس کے اوپر یہ سارا کچھ ظاہر ہوا اور اس میں سے پھر تصورات نکلے اور آپ کو مزید بینیفٹس، یعنی آپ نت نئی ایجادات کرتے ہیں، نت نئی چیزیں بناتے ہیں، اپنے لیے سہولتیں ایجاد کرتے ہیں، اور پھر آپ کی جبلت، اور یہ سارا کچھ دیر کے لیے، کچھ انتظام کے طور پہ ہے۔ فائزہ جاتا تامت القبرا، حتیٰ کہ فائنل مومنٹ اپروچز، حتیٰ کہ وہ حتمی گھڑی آ جاتی ہے، تامت القبرا بڑی گھڑی، یعنی فائنل سیٹی، فائنلی وسل از بلون۔ اب دیکھیں نا، کمرے میں 10 بندے بیٹھے ہیں، ایک بندے کی گھنٹی بج گئی اور وہ چلا گیا، یعنی کہ وہ اس کے لیے تامت الکبرا یعنی فائنل مومنٹ، جیسے 1 2 3 گو، تو یہ جو اس کے لیے ہے گو کہا جانا، فائزہ جات تامت الکبرا، اور یہ جب وہ فائنل گھڑی آ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، یوم یتذکر الانسان ما سعا، یہ حالت ایسی ہوتی ہے، یہ بناوٹ ایسی ہوتی ہے، یتذکر الانسان، انسان کو سب یاد آ جاتا ہے، اس کا ذکر اس کے ذہن میں چلتا ہے یا واپس दोहराया जाता है मासा जो उसने किया होता है। ये डेथ के वक्त जो सीन चलता है वो ये कि इंसान को अपनी पूरी जिंदगी की फिल्म रिवाइंड हो रही होती है। यौम यतज़क्करुल इंसानो मासा, जो उसने किया होता है वो उसको याद आ जाता है, दोहराया जाता है। यतज़क्कर दोहराया जाना। व बुर्रिज़ातिल जहीम लिमन यरा, और जहीम को उसके करीब लाया जाता है और वो उसे देख लेता है। लिमन यरा, ठीक है, फिर वो उसे देख लेता है, यानी उसे अपने करतूत भी नजर आ जाते हैं, उनका अंजाम भी नजर आ जाता है। अगर वो गलत काम होंगे तो वो जहीम को देखेगा। ठीक है, आगे बता दिया कि ये लमई यरा कौन है, देखने वाले कौन है। फाम्मा मन तगा, ये वो है जिन्होंने तगा किया होगा, सरकशी की होगी। वो असर अल हयात दुनिया, असल जुर्म ये कि इन्होंने दुनिया की जिंदगी का असर लिया होगा। गौर करें, हम हर वक्त क्या करते हैं, उसने ये कहा तो उसने ये क्यों नहीं कहा, उसने ये क्यों किया तो उसने ये क्यों नहीं किया, हम इसका असर लेके हर वक्त रो रहे हैं। तो ये हर वक्त के रोने का ही रिकॉर्ड बनेगा, तो मरते वक्त यही सामने आएगा। तो अल्लाह बता रहे हैं कि जी एक तो आपने सरकशी की, अल्लाह की बात नहीं मानी और दुनिया की जिंदगी का असर लिया। वह असर अल हयात दुनिया फा पस इनल जहीम हय्यल मावा। अब ये हय्या जो है ये देखें हलवे वाली है से नहीं है, ये दो चश्मी है से है, आ जाओ, इसका तर्जमा है आ जाओ। फाइनल जहीमा, ये है वो जहीम यानी रुकने की जगह, घुटन की जगह, तकलीफ की जगह। और हय्यल मावा, आ जाओ अब इसमें रहो, मावा रहने की जगह। वा और अम्मा मन खाफा मुकाम रब्बे ही, जिन्होंने अपने रब के मुकाम का एहसास रखा, जिन्हें अपने रब के मुकाम का एहसास था। वह अम्मा मन खाफा, खौफ का तर्जमा गलत है, खाफा एहसास था उनको कि हमारे रब का रुतबा मुकाम क्या है। और वह नहीं नफ्सा अनल हवा, वो अपने नफ्स को मना करते थे फजूल फालतू बातों में, ऐसी बातों में जिनका अंजाम कुछ नहीं होता, उनकी तरफ से अपने नफ्स को रोकते थे। वह नहीं नफ्स अनल हवा, हवा यानी फालतू की बात, इसे कहते हैं अप, हमारे यहां तर्जमा कर दिया कि जी वो अपनी जाती ख्वाहिशों को फॉलो करते थे। तो अगर वो अपने रब के मुकाम का उनको एहसास था और अपने नफ्स को रोकते थे फजूल बातों से, तो फाइनल जन्नत हय्यल मावा, उनके लिए जन्नत है, वो होंगे खुशी की कैफियत में हय्यल मावा, और उन्हें कहा जाएगा कि आ जाओ रहो इसमें। अब देखिए पूछते हैं, यह सलूना का अना सात अयान अयाना मुरसहा, ये पूछते हैं ये घड़ी कब आएगी। फीमा अंत मन ज़करहा, तुम होते कौन उसका तज़करा करने वाले, तुम्हारी औकात है कि तुम उसकी बात करो। इला रब्बे का मुंतहाहा, ये तुम्हारे रब की तरफ है कि इला रब्बे का, तुम्हारे रब के पास है। मुंतहाहा के इसकी इंतहा कब करे, यानी कब किसके लिए कब वो घड़ी लाता है, ये सब तुम्हारे रब का काम है। इन्नमा अंत मुनज़िरु मन यख्शाहा, और मेरा काम तो मतलब तुम्हारा काम तो सिर्फ इनको मुनज़िर नजर वार्निंग देना। मन यख्शाहा, जो एहसास करे, जो एहसास करे उसको वार्न करना है। कान्नहुम यौमा यरौनहा, और जो इस वार्निंग को सुनकर एहसास करेंगे, कान्नहुम वो होंगे यौमा, उनके लिए यूं होगा, यरौनहा वो यूं देखेंगे, لم یلبسو کہ ہم نہیں رہے الا عشیتن او دہاہا کہ جیسے ہم رات کو سوئے اور صبح اٹھے. یعنی جو لوگ رب کی وارننگ کو مان کر اس کا احساس کرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے یہ ساری بناوٹ ایسی ہے جیسے رات کو سوئے, عشاء کے وقت سوئے اور صبح کے وقت اٹھ گئے. یہ ہے ان کے لیے ساری زندگی کی مطلب ٹوٹل ڈیوریشن جو ہے وہ ایسے ہے, یعنی کہ وہاں پہ یوں لگے گا جیسے ہم ایک تاریک رات سو کے گزار کے کوئی ڈراؤنے خواب دیکھ کے کوئی اچھے خواب دیکھ کر یہاں واپس بیدار ہو گئے ہیں. یعنی اوپر کی دنیا میں یہ عالم ہوگا. صدق اللہ العظیم, بے شک اللہ کا ارشاد حقیقت ہے. جی جناب.
کسی ڈیزائن کا کوئی سوال آ رہا ہے بیٹا؟ السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
جی میں یہ جو شروع کی آیات ہے نمبر
9 تک
چلے, اس میں یہ جو الفاظ کا استعمال ہے دو دفعہ, تو یہ کن کے لیے کہا جا رہا ہے؟ کون ہے جو کھینچیں گے, کون ہے جو آسانی سے؟
میں نے اشارہ دے دیا, آپ غور خود کیجیے. ٹھیک ہے
چلیں ٹھیک.
کیونکہ یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ بعض چیزیں آپ کو خود سمجھنے کی ہیں. اس سے پہلے میں نے معنویت ادبیت اور مفہوم کی گہرائیوں کے حوالے سے ایک تقریر دل پذیر ارشاد فرمائی. تو یہ جو سارے مفاہیم ہیں ان کو آپ کو مطلب سمجھ آ گیا جب آپ اس پہ خود غور کریں گے. تو میں نے بتایا کہ ایک منظر کی بات ہے, اشارہ دیا کہ ایک تقاضے کی تکمیل کا اشارہ ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا جی؟
جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ.